Bismillahir Rahmanir Rahim. Living with Vision, session number 4. मैंने आज सुबह आप लोगों को एक कोड भेजा है जो बेसिकली आज के सेशन के बारे में है कि हमारे साथ ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात पेश आते हैं और हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि उनका क्यूमुलेटिव रिज़ल्ट क्या होने वाला है। एक इवेंट जब हमें पेश आता है, मसलन नेगेटिवली आप ले लीजिए, जैसे कोई नेगेटिव बात हमारे साथ हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, हम लॉस को फेस करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स में मसले मसाइल पैदा होते हैं, हमें ज़िंदगी में नाकामियों का सामना करना पड़ता है, तो इन सब का क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट जो है वो हमारी विज़न पर क्या होता है। अक्सर लोगों से अगर आप बात करके देखें और उनको कहें, उनसे पूछें कि आपकी अपनी ज़िंदगी की क्या विज़न है, तो वो आपको ये कहते हैं कि जी हम तो अभी अपने रोज़मर्रा के मसाइल से नहीं रिकवर हो रहे हैं, हम तो अभी इतने फंसे हुए हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हम एक फ्यूचर विज़न के बारे में कैसे सोच सकते हैं। और ये सबसे कॉमन जवाब है जो यानी कि बालिग लोगों से जो मिलता है, और यहाँ तक के 50 साल की उम्र या 40-45 साल की उम्र के जो एडल्ट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ अपनी विज़न के बारे में सोचना उन्होंने शुरू किया हुआ होता है। और फिर जब वो एक ऐसी उम्र में पहुँचते हैं जहाँ वो रियलाइज़ करते हैं कि एक विज़न ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और एक मकसद के बग़ैर बामकसद ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, तो वो बड़े आराम से 45-50 ईयर ओल्ड हो चुके होते हैं। और ये एक ऐसी उम्र है जिसमें फिर आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसमें एक विज़न बना नहीं सकते, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर उस उम्र में आपके अंदर वो तवानाई और वो एनर्जी नहीं रही होती है जिससे आप एक बड़ी विज़न को रियलाइज़ कर सकें, या आपको ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है, या जिन छोटे छोटे मसले मसाइल की वजह से आपने कभी अपनी विज़न के बारे में सोचा ही नहीं था, वो मसले मसाइल अब इतने बड़े हो चुके होते हैं, जिनमें से यानी कि जो सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे बच्चे हैं, हर कोई ये कहता है कि ज़रा मेरे बच्चे बड़े हो जाएं और ये ज़रा सेटल हो जाएं तो फिर मैं ये करूँगा या वो करूँगी। तो बच्चे जो हैं, यकीन करें, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं आप समझें कि उनके मसले मसाइल भी बड़े होते चले जाते हैं उनके साथ, और आपको उन्हें प्रायोरिटी रखना चाहिए और उन्हें एक फ़िक्स टाइम देना चाहिए। और जाहिर है हमारी पूरी ज़िंदगी बच्चों को डेडिकेटेड होती है, लेकिन अपनी विज़न जो है उसे कभी भी आंखों से नहीं ओझल होने देना चाहिए। तो सबसे पहली जो मैं आपको आज एग्ज़ाम्पल देने वाली हूँ वो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की है, जिनकी हमने पहले भी बात की थी। और विक्टर फ्रैंकल एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो जिनकी पूरी फैमिली जब ये नाज़ीज़ का और यहूदियों का हॉलोकास्ट चला था तो उनकी पूरी फैमिली उसमें उनके सामने ख़त्म की गई थी। उन्होंने वो सब कुछ देखा था और बर्दाश्त किया था, और उन्होंने फिर अपनी एक किताब लिखी है जो मैंने आपको किताब की तस्वीर भी भेजी थी, अ मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ज़िंदगी में हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उन एक्सपीरियंसेस की रोशनी में हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए, हर वक्त ऐसा करते रहना चाहिए कि आखिर हमारी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है। और अगर हमारे साथ ये बात हुई है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी वजह क्या है, यानी कि वो कौन सी वजह है जो हमारे अंदर पाई जाती है जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है। और अगर हमारे साथ एक मसला हो गया है तो हम अपने लेवल पे और अपनी ज़ात तक महदूद रख कर अपने आप को उस मसले का कैसे मदावा कर सकते हैं और उसका कैसे तदारुक कर सकते हैं। और उन्होंने अपना जब वो हॉलोकास्ट कैंप में जब वो गए हैं और वहाँ पे इंतहाई एक सख्त ज़िंदगी, मतलब कि ज़ुल्म व सितम की कोई मिसाल नहीं मिलती है उन कैंप्स में जो इंसानों के ऊपर तोड़े गए हैं, कि उनको खाने को दिन में एक दफ़ा 5 आउंस पता नहीं कितनी वज़न की एक छोटी सी ब्रेड दी जाती थी, और उनसे इंतहाई मुश्किल काम लिए जाते थे, और उन कामों के बदले में फिर उन्हें टिकट दिए जाते थे कि आप इस टिकट की सिगरेट ख़रीद सकते हैं या आप इसका सूप ख़रीद सकते हैं। और डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ये कहते हैं कि जब मैं उस कैंप में गया तो मुझे ऐसे लगा जैसे जितना मेडिकल मैंने पढ़ा हुआ था वो सब झूठ था, और मैंने मेडिकल को एक नए तरीके से देखा जिसमें मैंने बहुत सी चीज़ें, नई चीज़ें डिस्कवर की। यानी वो कैद में उनके साथ जो जुल्म सितम हुए और जिन मुसीबतों का उन्होंने सामना किया उनको इन्होंने ऐसे बयान किया है कि अगर इस कैदखाने के बाहर जो हैं तो लोगों को दांतों के मसले मसाइल पेश आते थे और उनके मसूड़ों से खून बहता था, और वो कहते थे कि ये फ़लां विटामिन की कमी है और ये फ़लां चीज़ की कमी है। तो जब मैं कैंप के अंदर गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे हमें कोई विटामिन नहीं मिलते थे, कोई ढंग की खाने की चीज़ नहीं मिलती थी, और हमें अक्सर हम दांत भी नहीं साफ़ कर सकते थे, हमारे पास टूथब्रश भी नहीं थे। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे दांत और मसूड़े जो थे वो पहले से कहीं ज़्यादा सेहतमंद थे, और ये एक ऐसी बात मुझे अजीब लगी जिसके बारे में मैंने पूरा तहैया किया कि मैं जब यहाँ से निकलूँगा तो मैं इस पर ज़रूर रिसर्च करूँगा। तो ये एक इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो उन्होंने, और ये एक पॉइंट है, ऐसे बहुत सी और बातें हैं। जैसे वो ये कहते हैं कि हमें हर हालत में नींद आ जाती थी, हम 6 फुट का एक मैट्रेस होता था और उसके ऊपर हम 6 या 8 मर्द सोया करते थे, और वो जाहिर है कि वो एक करवट पे सोए हुए होते थे और उनके पास तकिया भी नहीं होता था, जैसे किसी को एक डब्बे में बंद माचिस की तीलियां जैसे डब्बे में पड़ी होती हैं। और वो कहते थे इसमें भी हमें बहुत अच्छी नींद आती थी, बल्कि अक्सर कैदखाने के बाहर जो नींद होती थी ये नींद उससे क्वालिटी में कहीं ज़्यादा बेहतर होती थी और हम बड़े फ्रेश होकर उठते थे। तो ये तो मैं कहती हूँ एक पॉजिटिविटी की इंतहा है जो ज़िंदगी में दरपेश आने वाली ट्रेजेडीज़ या मसले मसाइल को इंसान इस नज़र से देखे। फिर इनका ये भी कहना है कि जब मैं ये नाज़ियों ने जब हमें गिरफ़्तार करना शुरू किया यहूदियों को, तो मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत करके मुझे अमेरिका का वीज़ा दिलाया, और वो बहुत खुश थे कि उनका बच्चा अमेरिका चला जाएगा और इस तरह उसकी जान बच जाएगी। लेकिन वहाँ इन्होंने कहा कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने माँ बाप के पास रह जाऊँ, और मुझे कभी भी इस फैसले पे पशेमानी नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं अमेरिका में होता और मेरे माँ बाप बग़ैर कोई इतला दिए और बग़ैर किसी निशानी के गायब हो जाते और कैद होकर गैस चेंबर में मारे जाते तो मुझे कभी भी ना पता चलता, और मैं उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन भी उनके साथ ना गुजार पाता, जो सारी ज़िंदगी शायद मुझे एक नफ्सियाती मरीज़ बना देती। तो ये तो मैंने आपको बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स दी हैं, मतलब इस लेवल की पॉजिटिविटी पे जाकर सोचना बहुत मुश्किल है। मैं ये मानती हूँ, सबसे पहले मैं ख़ुद ऐसा नहीं सोच सकती, लेकिन जब हम जब भी एक प्रिंसिपल की बात करते हैं, एक उसूल की बात करते हैं, तो हम हमेशा टॉप स्कोरर्स से शुरू करते हैं। जैसे जब हम सच्चाई की मिसाल बच्चों को देते हैं तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं कि वो सादिक और अमीन थे। तो चूंकि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ज़िंदगी में जो भी हमें दरपेश आता है उसका कोई मकसद होता है, और वो मकसद जो है वो हमें अपने विज़न के करीब करता है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, और ये मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रही हूँ, अक्सर मैं अपनी ज़ाती मिसालें नहीं देती हूँ बातों के दौरान, लेकिन ये एक ऐसी मिसाल है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ। जितने भी मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो मेरी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं वो इस मिसाल से फेमिलियर होंगे। तो इस तरह था कि मैं अमेरिका में ट्रेनिंग कर रही थी, और बड़ी सख्त ट्रेनिंग थी वो, एक ऐसी स्पेशलिटी की, नौजायदा बच्चों के आईसीयू की स्पेशलिटी में मैंने ट्रेनिंग की है। और वो उस वक्त मेरे 2 बच्चे थे, एक उनमें 4 साल का था और एक 2 साल का था, या एक 3 साल का था और एक 2 साल का था, अभी वो दोनों एक्सट्रीमली प्री स्कूल थे। और मैं वहाँ पर फेलोशिप कर रही थी, और वो बड़ी सख्त फेलोशिप थी जिसमें 36-36 घंटे की शिफ्ट्स होती थी। तो 1 साल मैंने वो काम किया, और 1 साल के बाद मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि अफशां, आप काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन आप के हमें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हैं, और अगर हमने आपको ऐसे ही छोड़ दिया इस प्रोग्राम में और आईसीयू में काम करने के लिए, तो हमारे स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं کہ پھر فیلوز جو ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور چونکہ سیکنڈ ایئر میں اور تھرڈ ایئر میں آپ کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہونے والی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا ایسا نہ پرفارم کر سکیں جیسا کہ آپ فرسٹ ایئر میں پرفارم کر رہی ہیں یا جیسا آپ سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا۔ تو یہ تو خیر ان کی بہت میں کہتی ہوں کہ بہت بلند تھنکنگ تھی ان کی، کہ انہوں نے پہلے سے یہ انٹیسپیٹ کیا اور مجھے ایسے کاؤنسل کیا، اور ان کو میرے حالات پتہ تھے کہ یہ یہاں پہ اکیلی رہتی ہے اور اس کے دو بچے ہیں اور ایک اور ملک سے آئی ہوئی ہے، کبھی اس کی پیرنٹس کبھی اس کی مدر آتی ہیں اس کی ہیلپ کرتی ہیں، کبھی اس کی مدر ان لا آتی ہیں۔ تو انہوں نے جب مجھے یہ بات کی، آپ یقین کریں مجھے ایسے لگا جیسے کہ میرے سر کے اوپر چھت گر پڑی ہے، کیونکہ میں پاکستان سے یہ ارادہ کر کے امریکہ گئی تھی کہ میں نے اس چیز میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے، اور پھر میں امریکہ میں یعنی آپ سمجھیں کہ ون آف دا بیسٹ پروگرامز میں مجھے جگہ مل گئی تھی اور میں وہاں پہ ٹریننگ کر رہی تھی، لیکن وہ جو بوجھ تھا اور وہ جو ٹینشن تھی اور جو میرا اپنا حشر تھا، مجھے اندازہ تھا کہ شاید یہ ٹریننگ میرے لیے پوری کرنا مشکل ہو۔ تو پہلے سال انہوں نے کہا پہلا سال پورا کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ سپروائزڈ ہیں اور آپ کے ساتھ اور بھی سینئر فیلوز کام کر رہے ہیں، لیکن سیکنڈ ایئر سے ہم آپ کو پھر لیب میں ڈال دیں گے، آپ جو ہیں تو ایک ریسرچ فیلو بن جائیں گی۔ تو میرے تو خیر ہاتھ پیر پھول گئے، مجھے ریسرچ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور پھر امریکہ میں ریسرچ جو بہت ہی ایک ہائی لیول کی بات ہے، اور ریئلی مطلب مجھے ایسے لگا جیسے بس میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی ہے، میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں اور کسی طرح میری یہ بے مقصد زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ میری زندگی کا تو مقصد ہی وہ فیلوشپ کرنا تھا، اور وہ فیلوشپ بھی میں نے لے لی تھی، مجھے مل گئی تھی وہ فیلوشپ۔ تو خیر میں گھر واپس گئی، جب میں گھر واپس جانے لگی اور ڈرائیو کرنے لگی تو رات کا وقت تھا اور وہ وہاں برف باری ہوتی ہے، کافی سردی تھی، تو راستہ بھی اتنا کچھ صاف نہیں تھا، کافی دھند تھی۔ تو ہاسپٹل اور میرے گھر کے بیچ میں ایک خاصی بڑی شاہراہ تھی، ایک خاصا بڑا چوراہا تھا جس کے اوپر اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہوتی تھیں، اور کافی ساری اسٹریٹ لائٹس تھیں، مطلب تین لائنیں اس طرف سے اور تین لائنیں اس طرف سے، خاصا ایک کمپلیکیٹڈ چوراہا تھا۔ تو میں اس چوراہے پر جب پہنچی ہوں اور میں نے ریڈ لائٹ پہ گاڑی روکی ہے، تو اب وہ مجھے یاد نہیں ہے وہ ٹائم ایگزیکٹلی کہ وہ رات کا ایک کافی لیٹ ٹائم تھا اور میں ڈرائیو کر رہی تھی، اور جب چوراہے پہ میں رکی ہوں تو مجھے ایسے لگا جیسے شاید میں مزید ڈرائیو نہ کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ میں سڑک کی دوسری طرف گاڑی پارک کر کے گاڑی میں ہی سو جاتی ہوں، لیکن ایک دم سے سامنے سے بہت بڑی بڑی لائٹیں مجھے نظر آئیں، اور بہت اونچا ایک ہارن تھا، ایک بہت یعنی ٹرک کا ہارن جیسے ہوتا ہے، اور جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا، 16 wheeler، اور اس نے بالکل مجھے یعنی وہ بہت تھوڑے ڈسٹنس میں اس نے مجھے بچایا ہے، اور جب وہ میرے پاس سے گزرا تو وہ رک گیا وہ آدمی، اور اس نے کھڑکی سے نکل کے خاصی رنگ برنگی گالیاں دی مجھے، اور وہ گزر گیا پھر وہاں سے۔ تو مجھے جب ہوش آیا، میں نے ریئلائز کیا کہ میں سڑک کی اپوزٹ سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، یعنی کہ الٹے ہاتھ پہ میں کھڑی ہوئی تھی، اور اگر وہ ٹرک تھوڑا زیادہ تیز ہوتا یا میں سرخ بتی پہ نہ رکی ہوتی تو شاید وہ مطلب میری مجھے وہ کرش کر چکا ہوتا، اور میری زندگی جو بھی اس وقت مجھے بے مقصد زندگی لگ رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہوتی۔ تو میں نے ایک دم سے اس وقت میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ لمحہ گزر گیا اور میں گھر جا کے اپنے بچوں سے ملوں گی، اور ایک دم سے جیسے مجھے اپنی زندگی بہت امپورٹنٹ لگنے لگی، اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے شاید بہت بڑی کوئی ناشکری کی ہے اللہ کی کہ اللہ نے مجھے ایسا سبق سکھایا ہے۔ وہ ایک لمحہ تھا، اور ہر کسی کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں، میری زندگی میں ون آف دا مومنٹس جو ہے وہ والا لمحہ تھا جب میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں نے بہت بڑی ناشکری کی ہے، اور میں خیر گاڑی ڈرائیو کر کے چلی گئی اپنے گھر، اور میں نے پھر ریسرچ ایئر جوائن کر لیا، اور ایک سال میں نے وہاں یونیورسٹی میں ریسرچ کی، بہت کچھ سیکھا میں نے۔ پھر میں واپس پاکستان آ گئی، और पाकिस्तान में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी और बड़ी जगहों पर नौकरियां करने का मौका मिला है। मेडिकल में जो भी बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, वहां पे मैंने काम किया है या उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया है या उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक टाइम था जब जो हेल्थ मिनिस्टर थे या हेल्थ मिनिस्टर थी, उनका और मेरा फ़ोन पर बाकायदा कॉन्टैक्ट होता था क्योंकि उनको मेरे साथ कोई काम था। फिर एक बड़ा यूनिक डिपार्टमेंट मुझे इस्टेब्लिश करने का मौका मिला जिसे मैंने 6 साल चलाया, जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मेडिकल स्टूडेंट्स की रिसर्च का डिपार्टमेंट बनाया गया था। और उसको फिर आगा खान में भी रेप्लिकेट किया गया और शिफा में भी रेप्लिकेट किया गया, और अब तो मेजॉरिटी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें वही मॉडल रेप्लिकेट किया जाता है। तो और ये सब काम जो मैंने किए और जितने प्रोजेक्ट्स मुझे मिले और जो भी हुआ, वो उस 1 साल रिसर्च की वजह से थे। जो भी देखता था कि इसने 1 साल इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च की हुई है और इसके पास ये वाले सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो मुझे हायर करते थे और मुझे इंसेंटिव देते थे और खुश होते थे कि मैं उनकी रिसर्च में हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं ये मकसद आपको बताने का ये है कि वो 1 साल की रिसर्च, जिसको मैं समझ रही थी कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और मैं तो ज़ाया हो गई हूँ, वो 1 साल की रिसर्च ने मुझे, आप समझें, 2002 से लेकर तकरीबन 2017 या 2018 भी डाल दें, 15-16 साल उसने मुझे पाकिस्तान में बेहतरीन जगहों पर नौकरियां दिलवाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाने का मौका मिला है, लोगों की मदद करने का मौका मिला है। तो मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं उस चीज़ के ऊपर, वो कम है। ये तो खैर मैंने एक प्रोफेशनल मिसाल आपको दी और अपनी एक रियलाइजेशन आपके साथ शेयर की। इसी तरह लोगों की पर्सनल ट्रेजिडीज़ होती हैं। जैसे सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं, शौकत खानम हॉस्पिटल। इमरान खान ने बहुत करीब से अपनी वालदा की सफ़रिंग को और उनकी तकलीफ़ को देखा था, और जो लोग इमरान खान साहब को जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं, ये एक बहुत अमीर और बड़ी इन्फ्लुएंशियल और बड़ी पढ़ी लिखी और ज़बरदस्त फैमिली है। बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ है इनका। बाहर जाके इलाज कराना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और लेकिन इनकी वालदा का कैंसर जो था वो अनडिटेक्टेड रहा, यहाँ तक कि वो नाकाबले इलाज हो गया। उनकी अपनी बच्ची डॉक्टर है, मतलब इमरान खान की एक बहन भी डॉक्टर हैं, और वो भी, यानी कि नोबडी सस्पेक्टेड कि इनकी वालदा का कैंसर इतना एडवांस हो चुका है। और फिर वो सब कुछ देखकर इमरान खान ने वो लॉस, वो तकलीफ़ और वो दुख जो उन्होंने सहा, तो आज तक और इंशाल्लाह आने वाली जितने भी हम जिंदा हैं जब तक, और जब तक शायद सब हैं, तो शौकत खानम जैसा इदारा पाकिस्तान में कैंसर के मरीज़ों की खिदमत करता रहेगा और चलता रहेगा। ये इमरान खान की विज़न थी, जो इंतहाई तकलीफ़ में और इंतहाई दुख की सिचुएशन में उन्होंने बनाई है। इसी तरह बहुत से लॉसेस हैं, मतलब इंसान का पर्सनल लॉस जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। अगर इंसान पॉजिटिवली सोचे तो पर्सनल लॉस एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है इंसान को अपनी विजन के करीब ले जाने के लिए, क्योंकि पर्सनल लॉस आपकी तरह या जिसका भी पर्सनल लॉस हुआ होता है वो उसकी तरह और कोई भी नहीं फील कर सकता। वो दुख जो है और वो गहराई जो है उस गम की, वो कोई और भी नहीं अचीव कर सकता सिवाय उसके जिसने उस दुख को फेस करना हो। और अगर वो उसको नेगेटिवली ले तो वो जाहिर है उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा, उसकी मोटिवेशन को ख़त्म कर देगा, उसको एक सेहतमंद और नॉर्मल जहन के साथ ज़िंदा नहीं रहने देगा वो। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जितनी ज़्यादा इसमें नेगेटिव एनर्जी है उतनी ही इस चीज़ में एक पॉजिटिव एनर्जी भी है, जो अगर एक लम्हे के लिए आप अपना लेंस स्विच करके देखें और आप कहें कि अगर अल्लाह ने ये काम किया है तो इसका यकीनन कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। जितना बड़ा दुख मुझे अल्लाह ने दिया है, शायद इतना ही बड़ा काम मुझसे अल्लाह ने लेना है। جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ، دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے کہ بے شک سختی کے ساتھ ہی اور تنگی کے ساتھ ہی کشادگی ہے. اور ان آیات کی گرامر، میں تو اتنی کوئی زیادہ مجھے گرامر نہیں آتی ہے عربی کی، لیکن ایک استاد سے میں نے پڑھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی گرامر ایسی ہے اس آیت کی کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ گویا اس کا اصطلاح میں آپ یہ کہیں کہ تکلیف کے بغیر راحت ہے ہی نہیں اور تنگی کے بغیر کشادگی آ ہی نہیں سکتی. تو یاد رکھیں کہ جتنی بڑی انسان کی ویژن ہے اور جتنا بڑا اس کا مقصد ہے اور جتنا بڑا اسے اللہ نے کام لینا ہے، اتنا ہی شاید اللہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ رکھا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا یکلف النفس الا وسعہا، ہرگز نہیں ہم مکلف کرتے کسی کو، ہرگز نہیں ہم کسی کو تکلیف دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. تو اس طرح کی ٹریجڈی اور اس طرح کے لاسز اور اس طرح کی ناکامیاں جب ہم فیس کرتے ہیں، جب جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دل پھٹ جائے گا اور ہمارا دماغ پھٹ جائے گا اور ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وسعت دیکھ کر ہی وہ ٹیسٹ آپ کو دیتا ہے. اور اگر اتنی وسعت ہے آپ میں کہ آپ اس صدمے میں سے زندہ نکل آتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ میں یقیناً اتنی وسعت ہے کہ آپ اتنے بڑا کوئی کام کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ آپ نگیٹو کی طرف کھینچے گئے ہیں اتنا ہی آپ میں پازیٹیو کی طرف جانے کی توانائی ہے اور ابلٹی ہے. تو مقصد آج کی ٹاک کا اتنا ہی تھا اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو ہیں تو ہم لوگ ویژنز کی جو ریٹریٹ ہم پلان کر رہے ہیں اس میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اوور کمنگ دا جو بھی ہماری، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ناکامیاں ہیں اور ہماری کمیاں ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ان کو اوور کم کرنا اپنی ویژن کے مقابلے میں، اور اس طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا کہ آپ کی موٹیویشن اپنی ویژن کی طرف زیادہ ہو جائے. تو انشاءاللہ اس فارمولے پہ کام کریں گے، آگے بھی اس کے اوپر ڈسکشن بھیجیں گے آئندہ ملنے کے وعدے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.